ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए नियामक और सेवा प्रदायक निकायों को अलग करने के उद्देश्य से विधेयक का मसौदा हो रहा है। पर्यटन मंत्री पांडे का कथन। उद्यम और परियोजना को सिक्योरिटी रखकर 25 लाख रूपये तक कर्ज उपलब्ध कराने के हिसाब से स्टार्टअप कर्ज प्रवाह के लिए हुई त्रिपक्षीय समझदारी। गंडकी प्रदेश में निकपा एमाले की ओर से 4 मंत्री हुए नियुक्त। मंत्रालय परिवर्तन पर असंतुष्टि जताते हुए राजीव गुरुंग ने दिया इस्तीफा। और बांग्लादेश में भीषण बारिश के बाद आई बाढ़ में कम से कम 59 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन को एकीकृत करने से संबंधित सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक जल्द ही संसद से पारित होगा। आज राष्ट्रीय समाचार समिति नेपाली भाषा 24 घंटा समाचार सेवा प्रसारण शुभारंभ समारोह में मंत्री गुरुंग ने बताया कि मीडिया काउंसिल विधेयक को भी सहमति के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। मौके पर संचार मंत्रालय की सचिव राधिका अर्याल ने कहा कि सीमित स्रोत साधन के साथ रासेसा द्वारा देश और विदेशों में रहे सेवाग्राहियों को लक्षित कर 2400 घंटे सेवा शुरू करना गौरव का विषय है। वहीं रासेसा के कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र झा ने कहा कि सूचना प्राप्त करना नागरिक का अधिकार है, इसलिए रासेसा ने अपना दायित्व निभाया है। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे ने कहा कि निजी क्षेत्र की साझेदारी को विस्तृत करते हुए पर्यटन क्षेत्र के विकास प्रवर्धन के लिए सक्रियता के साथ काम करेंगे। आज काठमांडू में आयोजित ट्रेकिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ नेपाल टान की 46वीं वार्षिक साधारण सभा में मंत्री पांडे ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास और प्रवर्धन के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका अपरिहार्य है। मंत्री पांडे ने बताया कि हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए नियामक और सेवा प्रदायक निकाय को अलग करने के उद्देश्य से लाया गया विधेयक अर्थ मंत्रालय से कानून मंत्रालय पहुंच चुका है। बता दें कि साधारण सभा नई कार्य समिति का चयन भी करेगी। टान के निर्वाचन में अध्यक्ष, पदाधिकारी और सदस्यों को मिलाकर कुल 25 सदस्यों की कार्य समिति में से 17 व्यक्तियों को निर्वाचित और बाकी सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था है। निर्वाचन में 1397 मतदाता होंगे। गंडकी प्रदेश के 4 मंत्रियों ने आज शपथ ग्रहण किया है। नेकपा एमाले की ओर से कास्की के प्रकाश केसी, नवलपुर की पद्मा जीसी श्रेष्ठ, बागलों के कृष्ण पाठक और पर्वत के मित्रलाल बस्याल मंत्री नियुक्त होने के साथ ही आज गंडकी प्रदेश प्रमुख डिलीराज भट्ट ने उन्हें शपथ ग्रहण कराया। बता दें कि केसी को भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मंत्रालय, पद्मा को कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्रालय, पाठक को स्वास्थ्य मंत्रालय और बस्याल को उद्योग तथा पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रालयों के बंटवारे में असंतुष्टि जताते हुए गंडकी प्रदेश के वन तथा वातावरण मंत्री राजीव गुरुंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री सुरेंद्र राज पांडे ने मंत्रिपरिषद में फेरबदल किया था, जिसमें गुरुंग खुद को मिला हुआ भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय एमाले के हिस्से में पड़ा था और गुरुंग को वन तथा वातावरण मंत्रालय दिया गया था। इस पर असंतुष्टि जताते हुए गुरुंग ने आज ही मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा दे दिया। वहीं उनके इस्तीफे को मुख्यमंत्री पांडे ने स्वीकृत भी कर लिया। ये जानकारी मुख्यमंत्री के प्रेस संयोजक नरहरि पौडेल ने दी। सरकार ने स्टार्टअप उद्यम कर्ज प्रवाह के लिए त्रिपक्षीय समझदारी की है। आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय में औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक और निक्षेप तथा कर्ज सुरक्षण कोष ने स्टार्टअप कर्ज प्रवाह के लिए त्रिपक्षीय समझदारी पत्र पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम में उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने बताया कि सरकार ने स्टार्टअप कर्ज प्रवाह के लिए 1 अरब रूपये का कोष खड़ा किया है, जिससे उद्यम और परियोजना को सिक्योरिटी मानकर अधिकतम 25 लाख रूपये तक कर्ज उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने आगे बताया कि कर्ज प्रवाह के लिए कार्यविधि पारित हो चुकी है और ऑनलाइन के माध्यम से नव उद्यमी कर्ज के लिए आवेदन दे सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि नेपाल में ही मौजूद स्रोत साधनों का उपयोग कर युवा पीढ़ी को विदेश जाने से रोकने और आंतरिक रोजगारी मुहैया कराने के लिए स्टार्टअप कर्ज प्रवाह किया जा रहा है और इसे प्रभावकारी बनाया जाएगा। सरकार ने नवीनतम ज्ञान, इल्म और क्षमता का प्रयोग कर स्टार्टअप उद्यम के लिए विभिन्न क्षेत्रों का चुनाव किया है, जिसमें कृषि, सिंचाई तथा पशु पक्षी, उत्पादन मूलक उद्यम, जड़ी बूटी, वन पैदावार, पर्यटन तथा मनोरंजन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, संचार तथा सूचना, शिक्षा, सुरक्षित यातायात, कूड़ा कचरा व्यवस्थापन लगातार क्षेत्र शामिल हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। अज्ञात बीमारी के कारण बांके के नरेनापुर में एक ही परिवार के 3 लोगों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। नरेनापुर स्वास्थ्य शाखा के प्रमुख नागेंद्र कुमार साह से मिली जानकारी के मुताबिक नरेनापुर गांवपालिका वार्ड नंबर 3 गेगली गांव में अज्ञात बीमारी के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि एक ही परिवार के 75 वर्षीय शांति पासी, उनकी 26 वर्षीय बहू उषा पासी और 1 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। इनकी मौत क्रमशः भाद 14, 15 और 16 गते को हुई। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख साह ने बताया कि शुरुआत में उषा पासी को सामान्य सिरदर्द हुआ, फिर 2 से 3 बार पेट में दर्द और दस्त हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। नरेनापुर वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष अजय मिश्र ने बताया कि अब तक 40 लोगों की जांच हो चुकी है और 7 लोगों की हालत गंभीर से सामान्य हो गई है। नरेनापुर में अज्ञात बीमारी से 4 लोगों की मौत के बाद प्रमुख जिला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल सहित की टोली ने स्थलगत अनुगमन करते हुए नरेनापुर स्वास्थ्य चौकी में औषधि अभाव न होने देने का स्वास्थ्य कार्यालय को निर्देश किया। संसदीय सुनवाई समिति ने इसराइल, मलेशिया, पाकिस्तान और पोर्चुगल के लिए प्रस्तावित राजदूतों की संसदीय सुनवाई की है। समिति की आज की बैठक में प्रस्तावित राजदूतों क्रमशः प्राध्यापक धन प्रसाद पंडित, डॉ नेत्र प्रसाद तिमलसेना, रीता धेदाल और प्रकाशमणि पौडेल की बातें समिति में सुनी गई। बीते श्रावण 14 गते की मंत्रिपरिषद बैठक ने विभिन्न देशों के लिए 17 राजदूतों की सिफारिश की थी। बैठक में उन सभी ने अपने अनुभव, विचार और अवधारणाएं प्रस्तुत की और समिति को द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, पर्यटन, विदेशी निवेश और नेपाल और जिम्मेदारी प्रस्तावित देशों के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी कराई। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि नेपालगंज इंटीग्रेटेड चेक प्वाइंट ICP को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक पहल की जाएगी। माओवादी केंद्र लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय आंतरिक प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने आज नेपालगंज ICP का स्थलगत अवलोकन भी किया। देश में सभी नाकों पर ICP स्थापित करने की सरकारी नीति होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले बनाए गए ICP को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भाद्रकृष्ण अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला कुशे ओसी पर्व आज वैदिक सनातन धर्मावलंबियों द्वारा पवित्र कुश, जिसका उपयोग पूरे वर्ष देव कार्य एवं पितृकार्य में किया जाता है, उसे घर में लाकर मनाया गया। धार्मिक मान्यता है कि ब्राह्मण द्वारा पूजा करके यजमान के लिए लाए गए कुश को घर में रखने से परिवार में समृद्धि आती है। शास्त्रीय मान्यता है कि आज के दिन उखाड़े गए कुश को पूरे वर्ष भर उपयोग में लाया जा सकता है और बाकी दिनों में उखाड़े गए कुश को केवल उसी दिन उपयोग में लाया जा सकता है। इस अवसर पर परंपरा के अनुसार बेटे अपने पिता को उनकी पसंदीदा मिठाइयां और भोजन खिलाकर सम्मान प्रकट करते हैं और अपने पिता का चेहरा देखते हैं। राष्ट्रीय विभूति युवा कवि मोतीराम भट्ट की 159वीं जन्म जयंती आज विभिन्न साहित्य कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाई गई। बाजुरा के मुख्य राजमार्ग अंतर्गत साफे मारतडी सड़क खंड अवरूद्ध हो गया है। रविवार से लगातार हो रही बारिश के साथ आए भूस्खलन के कारण 2 स्थानों पर सड़क अवरुद्ध हो गई है। जिला पुलिस कार्यालय पाजुरा के अनुसार साफे मारतड़ी सड़क खंड की बूढ़ी गंगा नगर पालिका 3 तापरी सेरा अमकोट में भूस्खलन के कारण सड़क अवरुद्ध हुई है। पुलिस के मुताबिक मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल बारिश न रुकने की वजह से रास्ता को खोलने में समय लग सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश में विनाशकारी बाढ़ से कम 59 लोगों की मौत हो गई है। आपदा प्रबंधन और राहत मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया समन्वय केंद्र NDRCC ने शनिवार को अपने नवीनतम अपडेट में कहा कि शनिवार तक जारी बाढ़ में 41 पुरुषों, 6 महिलाओं और 12 बच्चों सहित 59 लोगों की मौत हुई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार देश के 64 में से 11 जिलों में आई बाढ़ के पानी से 50 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और जान माल और खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई दक्षिण पूर्वी जिलों में बाढ़ की स्थिति में अब कथित तौर पर सुधार हो रहा है क्योंकि प्रभावित क्षेत्रों से बाढ़ का पानी कम होना शुरू हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिलों में अभी भी 6,96,995 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के मुख्यालय सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सभी बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचाने, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और पीड़ितों के लिए सहयोग बढ़ाने के अपने प्रयास जारी रखने का आग्रह किया। अधिकारियों ने बचाव अभियान चलाने, राहत सामग्री वितरित करने और उन केंद्रों की निगरानी करने के लिए आपदा प्रतिक्रिया बलों की टीमें भेजी हैं जहां बाढ़ प्रभावित लोगों ने शरण ली है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए नियामक और सेवा प्रदायक निकायों को अलग करने के उद्देश्य से विधेयक का मसौदा हो रहा है, पर्यटन मंत्री पांडे का कथन। उद्यम और परियोजना को सिक्योरिटी रखकर 25 लाख रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराने के हिसाब से स्टार्टअप कर्ज प्रवाह के लिए हुई त्रिपक्षीय समझदारी। गंडकी प्रदेश में नेकपा एमआलए की ओर से 4 मंत्री हुए नियुक्त, मंत्रालय परिवर्तन पर असंतुष्टि जताते हुए राजीव गुरुंग ने दिया इस्तीफा। और बांग्लादेश में भीषण बारिश के बाद आई बाढ़ में कम से कम 59 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।